हमारे साथ परमानंद की सबने भी गाथा आरम्भ की है, उसकी टीका अब आरम्भ करते हैं। एक बात आप ध्यान रखें, कल तक की जो चर्चा हुई है उसमें अवध स्पष्ट बोल से परद्रव्यों से भिन्नता सिद्ध की, और भिन्नता का अर्थ ये होता है कि एकत्व ममत्व कर्तृत्व और भोक्तृत्व चारों प्रकार के संबंध तोड़े, कि माने के किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है तो समझो कि आपने भिन्न जाना। आप जानते तो ऐसा हो कि भिन्न है, लेकिन इसका कर्ता तो नहीं हूँ, इसका भोक्ता तो नहीं हूँ, आखिर मालिक तो नहीं हूँ, तो ऐसे नहीं चलेगा। मतलब इस चारों चीजें छोड़े तो उसका अर्थ है कि हमने इससे भिन्न जाना। अब अनन्य वाले बोल में असमान जाति द्रव्य पर्यायों को अलग किया, नियत वाले बोल में सद्गुणी हानि वृद्धि को, अविभागी प्रत्योच्छेदों के परिवर्तन को अलग किया, असंयुक्त बुगल में मोहराग देश भावादियों को अलग किया, और अविशेष बोल में गुणभेद और प्रदेश भेद को अलग किया। अब ये पांच पांच विशेषण दिए, एक भी विशेषण में निर्मल पर्यायों से भिन्न ये बात नहीं। सिद्धांत दिला रहा हूं आपको, जिस दृष्टि के विषय में निर्मल पर्याय शामिल है कि नहीं है वो फिर बाद की बात आएगी, जब चर्चा करेंगे ख्याल में है ना, लेकिन यहां कम से कम उसकी चर्चा नहीं। और समय सार के बहुत बड़े हिस्से में ये बात है, जो करुणादि अविराग आदि कहने जो भाव को न्यारा किया है, निर्मल पर्याय की बात नहीं है। फिर वर्णाद्या वा राग मोहा देव वा सर्वे भावा भिन्न ये वास्तव पुंसा, इसमें भी वर्णादि और आगादि से भिन्न बताया। 47 शक्तियों में कदम कदम पर गुरुदेव जी फरमाते हैं कि यहाँ निर्मल पर्याय ने शामिल करी ने बात है। मेरे कहने का मतलब यह है कि बहुत जगह ऐसा है कि जहाँ निर्मल पर्याय की बात नहीं की, क्योंकि अज्ञानी को समझाना है और उसके निर्मल पर्याय है कहाँ, संबंध निर्मा मोक्ष है कहाँ, अब उसे हम समझाएंगे तो मोक्ष से तू जुदा है। तो एक भी जीव ऐसा लाओ पकड़ के कि तू ऐसा मानता हो कि मैं मोक्ष करी हूं, कि मैं मोक्ष का स्वामी हूं, कि मैं मोक्ष का कर्ता भोगता हूं, ऐसे निर्वाह समझ के बारे में है। हाँ, स्त्री पुत्रादि में आश्रम में रागादि का कर्ता बनता है, मैंने ऐसा शुभराज किया, मैंने ऐसा पुण्यबंध किया, मैंने ये किया, इनके कर्ता भोगता बनते हैं, लेकिन उसके कोई कर्ता भोक्ता बनता ही नहीं है। तो आचार्य कहते हैं मुफ्त की मेहनत क्यों करें, पहले ये समझाएं कि केवल ज्ञान तेरे में है, और फिर समझाएं कि तू केवल ज्ञान तू नहीं है, कि जब वो प्रकट होगा तब तो मान लेंगे ना अपने में, कि तब फिर तेरे समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्यों। और उसके लिए तो एक ही तर्क पर्याप्त है कि आज तक जो नहीं था वो मैं कैसे हो सकता हूं, क्योंकि मैं तो अनादि का हूं। जो आज तक नहीं था नहीं है, जब तक संबंध ऐसा नहीं हुआ, जब तक जो चीज नहीं है और मैं अनादि का हूं, तो यदि वो मैं होता तो इसका मतलब मैं अनादि से हुई ही नहीं, यानी मुझको ही पैदा होना है। तो जो पैदा होना है वो मैं हूं, कि जिसे पैदा होता ही नहीं है, जो बंध मोक्ष अभी करता नहीं है, बंध न मोक्ष करे ही आते ना युगसार में, तो वो मैं हूं। इसलिए सिर्फ मेरा कहना इतना नहीं है कि उसको बारे में ये है, लेकिन हमारा सारा भजन कोई भी प्रकरण चले तो सबसे पहले केवल ज्ञान की धुनाई होना है, कि वो आत्मा नहीं है, वो आत्मा नहीं है, वो आत्मा नहीं है। मानो कहां से ये बात घुस गई कि वो केवल ज्ञान आत्मा नहीं है कहेगा तो वो बड़ा पंडित हो जाएगा, और इसलिए बृहत प्रकरण में ये बात नहीं। और ये टीका में जो पांच बोल बताए हैं उन्हें उसके पहले की जो दो पंक्तियां हैं वो बहुत मारने की टीका की, जो मैं पढ़ता हूं पहले। अवध स्पष्ट अनन्य नियत अवशेष और असंयुक्त आत्मा की अनुभूति शुद्ध नय है ना? और यह अनुभूति आत्मा ही है, आत्मा से अभेद किया है ना? अनुभूति शुद्ध नय है और अनुभूति आत्मा ही, मन शुद्ध नय भी आत्मा ही है, ऐसा हो गया ना? आप संस्कृत में पढ़ो सा खलु अवध स्पष्ट अन्य नियत अवशेष असंयुक्त स आत्मनो अनुभूति सा शुद्ध नया साभूति रातमयी क्योंकि आत्मयी के प्रदेश से इससे मालूम पड़ता है कि शुद्ध नय का जो ज्ञान होता है तो उसमें आत्मा ही प्रकाशित होता है। देखिए अपन कहते हैं तो 18वीं गाथा आएगी ना, तो उसमें लिखा है अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल के नित्य अनुभव में आ रहा है ना? तो अपन कहते अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा, तो अनुभूति तो पर्याय है, तो भगवान आत्मा अनुभूति स्वरूप है। तो इसमें 14वीं गाथा में कहा ना कि वह अनुभूति शुद्ध नय है और वह अनुभूति आत्मा ही है, इसका मतलब शुद्ध नय अनुभूति और आत्मा ये तीनों को एक बता रहे। तो कैसे बता रहे जी? कैसे बता रहे? तीनों को अभेद करके बता रहे, यानी अनुभूति को अलग रखें और आत्मा को अलग रखें तो भेद हो जाएगा ना। शुद्ध नय तो नय का भेद है, वो नय तो निश्चित रूप से पर्याय ही होती है क्यों, लेकिन उसे यहां अभेद मतलब आत्मा के साथ कहते वो आत्मा ही है, तो वो कहते शुद्ध नय। तो कलश में क्या कहा था? दस में प्रकाश एन शुद्ध नये भी देती, कि उसको प्रकाशित करता हुआ शुद्ध नय उदय को प्राप्त होता है। तो शुद्ध नय उदय को प्राप्त होता है कि आत्मा उदय को प्राप्त होता है? अरे उसी को आत्मा उदय को प्राप्त होता कहते हैं और उसी को शुद्ध नय उदय को प्राप्त होता कहते हैं और उसी को अनुभूति उदय को प्राप्त होती कहते हैं। उदय उदय जो शब्द का प्रयोग है, शायद मैंने पहले दिन उसकी बात कही थी कुछ, उदय क्यों लिखा यहां पर? मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा अभी है मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक शास्त्र का उदय होता है क्यों? एक तो कर्तृत्व बुद्धि का निषेध है, मैं इसे करता हूं मैं बनाता हूं ऐसा कुछ नहीं कहना चाहते हैं, ये तो अपने आप उदय हो रहा है, सूर्य उगता है ना जैसे। तो उदय का संबंध हमेशा लगभग ज्यादातर सूरज के साथ होता है और सूरज जितने भी प्रकाशमान पदार्थ हैं उनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। तो इसे समझो हमारे लिए हम आत्मा का उदय होता है, शुद्ध नय का उदय होता है, तो हम उसे सूरज जैसी महिमा ध्यान बताना चाहते हैं। मैंने ये साधारण काम नहीं है, ये काम हो गया है, मैंने आप समझिए उदय हो रहा है। तो अब देखिए उस ज्ञान की पर्याय में आत्मा जानने में आया, बात तो ये हुई, क्रिया तो ये हुई, काम तो ये हुआ। अब इसको जो जानने में आया तो कल तक जानने में नहीं आ रहा था, तो उसको उदय होना कहते हैं। सूरज अभी तक देखने में नहीं आ रहा था 5:30 बजे तक, और पौने 6 बजे देखने में आ गया, उसी को तो उदय बोलते हो। अपने ज्ञान में अनुमान से लगाओ कि ये अभी बनना है, बन रहा होगा सूरज, ऐसे 15 मिनट में बन के तो निकल आएगा। तो वो वहां है तो सिर्फ आड़ में है और हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो भगवान आत्मा आड़ में था, राई की ओर में पहाड़ होता है ना, उसको उसको उदय होने का मतलब वो कोई नया क्रिएशन नहीं है, वो तो सूरज वैसा ही प्रकाशमान तेज का पुंज। अपन 12 बजे का सूर्य तो ऐसा होता है, 12 बजे का सूर्य ऐसा सुबह का तो ठंडा ठंडा होता है, शाम का भी ठंडा पड़ जाता है, क्यों सूरज ठंडा पड़ जाता है? वो सूरज तो 24 घंटे 12 महीने बिल्कुल एक सा ही प्रताप बंद है, तेरे तो सीधी किरणें पड़ती हैं, तो तुझे बहुत गर्म और बहुत तेज दिखता है, और वो किरणें तेरे पर आ ही आती हैं तो उनका जोर कम हो जाता है, तो ये तो तेरे दिखने की बात है क्या? वो लाल थोड़ी हो गया, आप सनसेट देखने के लिए जाते हैं ना अभी, और वहां पर लोग से मुझे खड़े रहते हैं, तब तक उसके किनारे अधिक अभी से रास्ता देखो 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 क्यों। वो तो 12 बजे जैसे सूरज था ना, ऐसे भगवान आत्मा तो अनादि अनंत एकता है। अब तेरी ज्ञान पर्याय के जानने में आया तो उसे आत्मा जानने में आया तो आत्मा का उदय हुआ कहते हैं। और चूंकि सूरज तो वैसा ही था, वो तो ज्ञान पर्याय नहीं पैदा हुई, इसलिए कहते हैं शुद्ध नए उदय को प्राप्त हुआ। काम एक ही हुआ, काम दो नहीं हुए। उसी को शुद्ध नय का उदय कहते हैं, उसी को आत्मानुभूति का उदय कहते हैं और उसी को आत्मा का उदय कहते हैं। ये तो ठीक नहीं है, लेकिन दुनियादारी में ऐसा नहीं होता है। एक अम्मा जी देरी देरी चली जा रही थी, क्या 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 बात है अम्मा जी, जितने देरी जल्दी क्यों जा रही हूँ, क्या बात है, कि कुछ नहीं कुछ नहीं, नहीं कुछ तो तुम मेरे पोता हुआ है ना। मैंने कहा अच्छा तुम्हारे पोता हुआ है, हाँ। यहाँ क्यों जा रही हूँ, दौड़ रही हूँ, अस्पताल में भर्ती होती हूँ, मैं क्यों अस्पताल में भर्ती हूँ, मुझे क्या हुआ है, ये पोता। माँ के बेटा क्यों, दादी के पोता, अलग अलग बच्चे होते होंगे, वो तो एक ही हुआ है बच्चा, और वो हमेशा माँ के ही होता है और किसी के नहीं होता है, समझे, बाप के नहीं होता, दादा के नहीं होता, दादी के नहीं होता, चाचा के नहीं होता, चाची के नहीं होता, भूआ के नहीं होता, भूपा के नहीं होता, मामा के नहीं होता, क्यों। लेकिन सब ये नहीं कहते कि हमारी बहू के बेटा हुआ है, कि हमारी ननंद के बेटा हुआ है, हमारे भांजा हुआ है, इसी भाषा में बोलते हैं, यानी वो अपने से ही सीधा संबंध लेते हैं, माँ को बीच में नील कर देते हैं, और है दो दो बीच में कोई बीच में नहीं चाहिए, क्यों, उसमें अपनापन दिखता है, हुआ तो एक ही, तो काम तो एक ही हुआ, कौन सा, वो आत्मा की अनुभूति हुई, तो मान सकाली जो भगवान आत्मा ज्ञान की पर्याय में जो बना डायरेक्ट, और डायरेक्ट गेट बनता है उसको आत्मानुभूति बोलते हैं, और उनको ज्ञान की पर्याय को शुद्ध नय बोलते हैं। अब अकेले ज्ञान गुण की पर्याय हो तो उसे शुद्ध नय बोलते हैं, और उसमें अनंत गुण की पर्याय शामिल कर लो तो उसे अनुभूति बोलते हैं। शुद्ध नय अनुभूति में क्या फर्क है, तो उसमें शुभ गुण भी शामिल हो गया अनुभूति में, अतिंद्रिया आता ना, अतिंद्रिय आनंद का रोमांच हो जाता है, जो होता है, और सोनगढ़ में लिखा था ना प्रसादास होने सर्व गुणांश संकित, मैंने जब आत्मा को भगवान आत्मा ज्ञान का गेह बनता है डायरेक्ट, तो अकेले ज्ञान कोई सौंदर्य प्राप्त नहीं होता, बल्कि अनंत गुणों में शुद्धि प्रकट होती है अंश में। और जो गुण शुद्ध ही पड़े हैं अनादि से, उनमें क्या होना वो एक अलग बात है, लेकिन मेरे कहने का मतलब पूरा आत्मा शुद्ध होता है, अकेले श्रद्धा गुण सम्मा दृष्टि नहीं होता, तो श्रद्धा गुण में सम्मा दर्शन पर्याय प्रकट होती है तो पूरा आत्मा सम्मानदृष्टि होता है, समझ में आया क्या नहीं आया, पूरा आत्मा मैंने अनंत गुणों का पिंड, असंग प्रदर्शन का पिंड, फिर प्रदेश प्रदेशों में होता होगा सम्मानदर्शन। सम्मानदर्शन के बारे में शायद मैंने पहले भी कहा, लेकिन फिर एक दफे याद दिलाता हूं, अनुभूति का नाम सम्मानदर्शन नहीं है, एक आध जगह मिल जाएगा लिखित तो चिंता नहीं करना, उसकी अपेक्षा अलग होगी, क्योंकि सम्मानदर्शन अकेले श्रद्धा गुण की पर्याय है, शुद्ध में अकेले ज्ञान गुण की पर्याय है, तो अनुभूति पूरी आत्मा की पर्याय है, अनंत गुणों की पर्याय है, और ये अलग अलग है। इसका प्रमाण ये है कि जब सम्मा दर्शन की उत्पत्ति होती है तब आत्मानुभूति के काल में ही होती है, दोनों एक साथ पैदा होते हैं, लेकिन आत्मानुभूति छूट जाती है तो सम्मा दर्शन कायम रहता है, क्यों, जब बच्चा पैदा होगा तो माँ से ही होगा, तो माँ का स्वरूप रहना जिंदा रहना बहुत जरूरी है, लेकिन फिर वो बच्चा पैदा हो गया, उस बच्चे को रहने के लिए माँ की जरूरत नहीं रहे तो बहुत अच्छी बात है, यदि वो कदाचित किसी कारण से उसकी मृत्यु भी हो जाए तो अभी उस बच्चे की सत्ता पर कोई फर्क नहीं आएगा, उसका अस्तित्व रहेगा कि नहीं रहेगा, समझ वो बेटा है तो अनुभूति रूपी माँ खत्म हो जाती है, तो भी सम्मा दर्शन कायम रहता है। इससे मालूम पड़ता है कि सम्मा दर्शन उसी चीज है जिसमें और आत्मानुभूति दी गई चीज है। अब दोनों की उत्पत्ति एक साथ होती है। अब एक बात और आगे चलो कि फिर यदि सम्यक दर्शन आत्मानुभूति आत्मा नहीं है तो जो ज्ञान ने आत्मा को जाना तो उसको ही हम आत्मानुभूति कहते हैं। तो शुद्ध तो वो तो ज्ञान गुण की पर्याय है, उसे हम शुद्ध नहीं कहेंगे तो सम्यक ज्ञान कहेंगे। तो सम्यक दर्शन क्या चीज है जो उस वक्त पैदा हो गई और बाद में रह गई और अनुभूति चली गई? क्या तो वो ये कहते हैं कि अनादि काल से आज तक अपने वो परम शुद्ध निश्चय ने का विषय हूं जो आत्मा बताया था ना कल प्रसुचार में बताए थे निश्चय ने की भेद उन्होंने ये बात बताई थी। वो उसके अलावा जगत के जितने भी पदार्थ हैं चाहे वो परद्रव्य हो परद्रव्य के गुण हो परद्रव्य की पर्याय हो अपनी पर्याय हो अपनी विकारी पर्याय हो अपनी निर्मल पर्याय हो उनके गुण भेद हो चाहे प्रदेश भेद हो इनमें किसी में अपनापन होने का नाम मिथ्या दर्शन है। मिथ्या दर्शन की असली परिभाषा ये है। वो भूत प्रेत मंत्र को पूज रहे हैं गणेश जी के मंदिर जा रहे हैं तो सब मिथ्या दर्शन हो गया तो बहुत ही स्थूल मिथ्या दर्शन है। ये समय सार वाला मिथ्या दर्शन नहीं है। गुरु की भाषा में कहूं तो ऐसा तो जो अनंत बार छोड़ा लेकिन कहीं कुछ हुआ नहीं। बहुत बड़ी कुसंगति से बच गए आप, ये बहुत बढ़िया बात है। ये नहीं कहता हूं मैं लेकिन उसे संबंध दर्शन हो गया ऐसा नहीं। जो मिथ्यात्व को हम छोड़ गए और उसके बाद समय दर्शन नहीं हो गया कैसा मिथ्यात्व होगा और हमने उसको छोड़े का क्या मतलब होगा? संबंधन होना चाहिए ना। तो वो जो सारा जगत है अपने आत्मा को छोड़कर उसमें जो अपनापन था आज तक उसका नाम था मिथ्या दर्शन। और अब वो अपनापन अपने स्तर का ही भोगना हो गया समझे ना, तो उसका नाम है समय दर्शन। अब वो आत्मानुभूति के बिना क्यों नहीं होता? क्योंकि उसकी एक शर्त है कि वो ज्ञान गुण डायरेक्ट खुद देखे बिना किसी दूसरे के सहयोग के। सांस में पढ़ा देखा गुरु के मुख से सुन के देखा ये सभी चलेगा तो ही वो श्रद्धा गुण पलटती है। इसलिए बहुत बढ़िया उदाहरण ऐसा है कि अदालत में किसी को किसी ने किसी की हत्या की तो उसके लिए चश्मदीद गवाह बुलाते हैं तो उसके आधार पर सारा निर्णय होता है। क्यों? यदि गांधी जी को नाथूराम गोडसे ने मारा था इस बारे में विश्व के 6.5 अरब आदमी हैं ये एक चोरी शंका है बोलो सब जानते हैं कि नहीं जानते इसको? अखबारों के पेज रंगे गए थे कि नहीं? लेकिन नाथूराम गोडसे को फांसी लगने में 20-25 वर्ष क्यों लग गए? हत्या करी है हत्या का फल फांसी है और उसी के अपराध में से फांसी दी गई। ये भारत की अदालत में इतने वर्ष किस बात के लिए लग गए कि भाई ऐसा नहीं चलता है? हमने जाके गवाही दी कि नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को मारा है कि तुमने खुद देखा है कि हाँ देखा है कि कहां न भारत टाइम्स में कि चलो हटो यहां से समझे ना। लेकिन तुमने आत्मा देखा है कि हमें देखा है कि समय सार में कि जाओ यहां कल समझ समझे समझने के नहीं। फिर उसके लिए निर्धारित टाइम समय सार है तो उसके लिए समय सार निर्धारित टाइम है। इन अखबारों की भी उपयोगिता है ऐसी बात नहीं है, मेरे कहने का मतलब यह है। लेकिन समय सार की भी उपयोगिता है तो उसने लिखा है वही देखना लड़की के बिना ही तो काम नहीं होता। लेकिन वो ये कहे जहां मैंने देखा है वो ये कहे कि मेरे पिताजी ने देखा तो अगर पिताजी को अदालत में हाजिर करो उनकी गवाही होगी तुम्हारी जीत होगी। उनने मेरे से कहा ना उन्हीं के हिसाब से मैं तुमसे कह रहा हूं कि नहीं अदालत इन बारे काम नहीं करती। जो ये कहे कि मैंने देखा है उसको हम बात करें। तो कहा साहब वो तो इस हालत में नहीं है जो अदालत में आ सके, बेड रेस्ट पर हैं, तो कोई बात नहीं है, अदालत उनके घर जाएगी। लेकिन वो खुद पूछेगी, पुलिस वाले पूछे आवे, तुम्हारा मुंशी पूछे आवे, तू कोई वो मजिस्ट्रेट कहेगा कि मैं पूछूंगा और मैं अपने कान से सुनूंगा, फिर मैं डिसीजन करूंगा। क्या? क्योंकि ये साधारण बात नहीं है उसकी गवाह पर किसी आदमी को फांसी हो जाए, तो इसलिए वो उसने खुद देखी होनी चाहिए। अभी वकील लोग क्या करते फिर इसमें, एकदम नहीं वकील है, वकील तो ये कहते हैं क्या साहबा आपका नंबर कितना कितना नंबर का प्रश्न है, आपने देखिए चश्मा लगाए थे कि नहीं लगाए थे, कि कितनी दूर के तक का दिखता है, तब कितने बज रहे थे, लाइट थी कि नहीं थी, इधर शाम के 8 बज रहे थे, कौन सी तारीख थी, चंद्रमा का उदय था कि नहीं था, वहां लाइट जल गई। मतलब कहने का अर्थ ये है कि जिसने मारा उसको तुमने कितनी दूर से देखा, कितने उजेले में देखा, तुम्हारी आंख ठीक है कि नहीं, यानी हमें कन्फर्म होना चाहिए कि तुम्हारी आंख भी ठीक थी, तुमने पास से देखा, उजेला भी था, तुमने किसी को देख करके ऊपर से जैसे सूट पैंट पहना था और जैसे देख करके जैसे सूट पैंट वाले दवाई दे देते उसने मारा है। मैंने वो कन्फर्म होना चाहता, समझ गए ना, श्रद्धा गुण भी उस मजिस्ट्रेट से कम नहीं है। वो मजिस्ट्रेट बहुत बड़ा संकालु होता है, पुलिस शक के आधार पर गिरफ्तार करती है, पुलिस के पास ऐसा अधिकार है गवर्नमेंट की तरफ से कि तुम्हें किसी को शक हो जाए कि उसने हत्या की तो वो उसे गिरफ्तार कर सकती है, और उसी शक के आधार पर मजिस्ट्रेट उसको बरी कर देता है। क्योंकि भाई बात तो ठीक लगती है लेकिन तो भी यदि एकदम पक्की बात नहीं हुई, इसमें सच्ची गुंजाइश है तो उसका लाभ उसको मिलता है, किसको अपराधी को। तो ये श्रद्धा गुण कहता है कि ज्ञान गुण से बोलो भाई साहब तुमने देखा कि सोने सार ने देखा कि नहीं चला गया, कुंड गुण से सुना कि कुंड गुरदेवी से सुना कि नहीं चलेगा, क्या बात करते गुरदेवी का नहीं चलेगा, अब आज कही तो कही, अब ग्यारह इस गद्दी पर नहीं बैठना, नहीं इस गद्दी पर बैठ नहीं सकेगी। लेकिन हमने कहा था महावीर ने कहा दिग्धनी ने तो वो भी चलेगा, तो तुम्हें कोई अपराध नहीं हुआ था क्यों? तो गुरुदेव का कहा तो अपराध हो गया। अरे भाई कोई गुरुदेव और महावीर की बात थोड़ी है, वो तो कोई भी प्रवृद्ध समझे वो नहीं चलेगा, तुमने खुद देखा है क्या नहीं, इसलिए वो अनुभूति के काल में समय संगीत प्रति श्रद्धा गुण पलटता है। जिन पर पदार्थों ने उसने एकत्र स्थापित कर रखा था उनके छोड़कर अपने आत्मा में एकत्र स्थापित कर लेता है, और एकत्र स्थापित हो गया तो भले ही ज्ञान तो सुपर प्रकाशक है, श्रद्धा सुपर प्रकाशक नहीं है, दर्शन गुण है, श्रद्धा गुण सुपर प्रकाशक नहीं है ना, तो ज्ञान तो फिर बाहर में उपयोग चला जाएगा, धन्य पाने में भी जा सकता है और लड़ाई में भी जा सकता है, चक्रवर्ती होकर चक्रवर्ती तो लड़ाई में जा सकता है या नहीं, और शादी विवाह में भी जा सकता है, धंधे पानी में भी जा सकता है, तो वो लोग सम्मदर्शन कायम रहा कि नहीं रहा, तो सम्मदर्शन कब तक कायम है, जब तक उस त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में हमारा अपनापन स्थापित है तब तक सम्मदर्शन कायम है, दुनिया में कोई ताकत ऐसे नहीं। ज्ञान गुण के बारे में भी मैं थोड़ी बात बताना चाहता हूं, ज्ञान गुण भले ही सुपर प्रकाशक है तो ऐसा नहीं है सुपर प्रकाशक का अर्थ कि कभी अपने को जानता है और कभी पर को, क्यों वो जो भाषा ऐसी आती है ना कि जब वृद्धार्थ ने नई की आंख खोले और परिवार ने की आंख बंद रखे, परिवार से नई की आंख खोले, ये जन्म नहीं है, भले जन्म दिखाओ तो भगवान में नहीं, तो एक ही समय में दो नए लगते हैं भाई जी, उसी समय इस दृष्टि से देखने पर ऐसा है और इस दृष्टि से देखने पर ऐसा, मानो वो अलग अलग समय का, इसका मतलब आत्मा बदलता रहता है। तो ये जब ज्ञान गुण पर को जानने का काम करता है उपयोग बाहर रहता है, उस समय भी ज्ञान गुण की प्रगत प्रयाण में लज्जी शब्द का प्रयोग ज्ञान गुण के नहीं कर रहा हूं, क्योंकि तो आगे से दो नंबर की समझ लेते तो ज्ञान गुण की प्रगट पर्याय में 24 घंटे सम्यक दृष्टि को ये पता रहता है, ज्ञान में प्रगट रूप से ज्ञात रहता है कि ये मैं हूँ और ये मैं हूँ। क्या श्रद्धा गुण तो ये मैं हूँ बस इतना ही, ये मैं नहीं हूँ ये काम उसका नहीं है, तुम इस पर के बारे में नहीं किसी ने बताओ ये मैं हूँ। और ज्ञान में ये मैं हूँ और ये मैं नहीं हूँ किसमें सम्यक ज्ञान कायम है। अब लड़ाई लड़ रहा है, शमशान में हजार शादियां कर रहा है, भरते लोहे पड़ोगे पैरों के नीचे जमीन खिसक जाए। मैंने हिंदुस्तान में तो उसे कहीं पढ़ा नहीं, लेकिन अमेरिका में गया था, वो प्रकाश छावड़ा था ना घर वाला, उसके घर में छोड़ा था, उसके घर रखे थे वो, तो 7 दिन मुझे वहां ठहरना था, दिन भर तो मुझे काम नहीं था, तो उन्होंने 1000 पेज उसके वहां पड़े 7 दिन में। अभी मैं आपको क्या बताऊं, आप पढ़ लेंगे तो जितनी श्रद्धा आपकी भरत प्रकृति पर है उसकी गारंटी से आप ही रह जाए। टीवी पे महाभारत जिन्होंने देखा उनकी श्रद्धा श्री कृष्ण के प्रति बड़ी नहीं घटी। आप समझिए ना कि ऐसा छल धर्म का काम, इसको ऐसे इसके मारे सब्जी से उसके धोखे से धोखे उसको भी धोखे से उसके धोखे से ऐसे भगवान होते हैं क्या? और उसमें भी एक अध्याय जो है वो तो इतना, मैं गंगा शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहता हूं, इतना ऐसा है कि उस कवि ने लिखा है जो भगवान प्रसन्ना शास्त्री थे ना उन्होंने अनुवाद किया कि मेरी हिम्मत नहीं है इसका अनुवाद करके उसने छापी तो वो छोड़ दिया। अब हम और आप आमने सामने बाप बेटे बैठ के नहीं पढ़ सकते, अरे पति पत्नी बैठ के पढ़े तो शर्म आए। सप्ताह घंटा हमें ज्यादा तो करना नहीं पड़ता हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि वो जो तिथियां थी उस काल में भी एकाली धूम में अपनापन रह सकता है, तो समाजन रह सकता है, और ज्ञान उसे उस काल में भी जानता रहता है जो नहीं। और चारित्र चारित्र तो खत्म हो जाता होगा, क्षेत्र में देश में संयम कैसे नाथ जगह है, तो मैं पूछता हूँ नक्षत्र के साथी अनंतानंद जी के साथ गई तो उसमें चारित्र में कुछ निर्मलता हुई कि नहीं हुई? चारित्र माने क्या? ये 25 कथाएं हैं, ये चारित्र की विकारी परिणाम है, तो 25 कथाएं का अभाव तो चारित्र के निर्मल पर्याय है। तो अनंतानंद जी गई तो उतनी शुद्धि अंदर में आई कि नहीं आई? और वो उस वक्त कायम है कि नहीं कायम? अरे इससे भी खतरनाक बात है, मैंने बताई इनको कानून दूध के लिए कल ये मेरे पास 2 घंटा बैठे रहे। तत्वार सूत्र में और गोमक सार में दोनों में एक सूत्र आता है, गोमक सार में 2 गाथाएं हैं, सत्यार सूत्र में एक सूत्र है, सम्यक दृष्टि स्वागत मंत वेगत है ना, और इनकी असंख्य गुण निर्जरा, तो सम्यक दृष्टि की असंख्य गुण निर्जरा होती है, तो उसकी वृत्ति की फिर अनुवृत्ति की अंग 11 स्थान है। और तेजेन्द्र जी ने गोमक सार जो टीका लिखी उसने एक प्रश्न किया कि सम्यक दृष्टि के किससे असंख्य गुणी नजरा है, उसके पहले तो नजरा होती नहीं, तो उसने लिखा सम्यक के सम्मुख मिथ्या दृष्टि जो भद्र मिथ्या दृष्टि उससे, मैंने उसको भी होगी नहीं होगा तो सम्मेलन होगा कैसे, अनंतानुबंधी का नाश होगा कैसे? संभाषण तो अनंतानुबंधी मिथ्यात्व के अभाव के होने के बाद होता है, तो पहले कुछ काम हुआ है कि नहीं? अगर ने उसको लिखा तो उसे दृष्टि सौराग से हुआ क्या? शुद्धार्थ यहां है नहीं कि नहीं, वो जो दृष्टि का जोर है उससे हुआ वो काम, ऐसा गुरुदेश ने लिखा। तो अब असंख्या गुणी नजर हो रही। अब मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं जो कर्णानुयोग के विशेषज्ञ हैं कि सम्यक दृष्टि के जो असंख्यात गुणी नजरा हो रही है वो सामायिक के काल में होती है कि राजकर्ते के काल में भी होती है, और लड़ाई के काल में भी हो रही है कि भोग के काल में भी हो रही, मुझे जानना चाहता हूं। क्या समझना है? अरे वो तो समय समय हो रही, सबके समय हो रही, पंचमुषण वाले को ईश्वर संग नहीं, और कब जब समय करता होगा तब हम तो ऐसे मानते हैं कि शुद्ध योग में जब होगा तब निद्रा होगी, और जब शुद्ध योग में आएगा तो उसमें उसे बंद हो जाने लग जाएगा। अभी शुद्ध योग के काल में भी बंद होता है भाई साहब, और शुद्ध योग के काल में भी निद्रा होगी, घबराएंगे ना, पूरी बात समझ लेना। क्योंकि जो सुबोध योग के काल में मुझे आज दोष दे रहे हैं तो उनकी जो असंख्या संख्या निर्गुणी निगरा हो रही थी ना, सम्मान दृष्टि से वृत्ति से सम्मान दृष्टि सामायिक कर रहा है और मुनि आज उपदेश दे रहे, तो किसको ज्यादा निगरा है ना, उसके अंदर उस सिद्धोद्य से तुम्हारा अवसर नहीं, तो प्रवृत्ति के हिसाब से हो गया। उनकी तीन कसाई के अभाव रूप निर्मल प्रणति है, अब वो कार्य है, अब वो कहां चलेगी, पितृत्व में कई पदार्थ आ रहे हैं, चौथे में पांच महीने साल में है ना, अब पांच महीने स्थान वाला लड़ाई लड़ रहा है और चौथे स्थान वाला समय कर रहा है, अब इन योजना किसको है ना? तो फिर उनको बंद नहीं है कि हाँ बंद भैया दसवें गुणस्थान में, क्यों कि जब तक तो राज है तब तक तो बंद होगा, तो जो राज नहीं है तब तक तो बंद नहीं होगा, तो जो राज है तब तक बंद होगा। लेकिन ये लिखा है सम्मान किसी को बंद होता ही नहीं, वो तो जिस गुणस्थान में जितनी प्रकृतियों की बंध विच्छुक्ति हो गई उनका बंध नहीं होता, तो उसी को वो कहते हैं बंध नहीं होता, क्योंकि वो बाकी की तो उनको गिनती नहीं है, उनमें कोई दम नहीं है, और इनमें बहुत दम था इस हिसाब से, समझ में नहीं है। आपने 1000 बोरी गेहूं के भर के स्टॉक किया और वो चूहे बहुत है, वो भी ना खाते हैं, कम से कम 2-4 किलो गेहूं वो भी ना खा जाते हैं, आपके पास कोई उपाय नहीं है, तो आपका नुकसान हो रहा है ना, कितना गेहूं खा गए चूहे, जितने दाने खाए उतना नुकसान हुआ कि नहीं हुआ, कि 15 हमें तो आज तक नुकसान हुआ, हमारे दानों पर जिंगाई ही नहीं, हमारी तो बाजार भाव पर मंगाए, बड़ा भाव दूना हो गया, हमें कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन वस्तु स्वरूप की दृष्टि से देखें तो जितने दाने वो खा गए उतना नुकसान हुआ हुआ है, फायदा माधे हो क्या, फायदा तो निकल है कल्पना का है, फायदा तो कल्पना का है, मछली है भाव भाव का समझ रहे ना, तो वस्तु का नहीं है, तो वो तो वस्तु की जरूरत है। तो ये जो मुनिराज है और चौथे अनुष्ठान वाला पांचवे वाले वो सिद्धों के सतत से नहीं चल रहा है, तो वहां जो रात का अंश है ये बंद का कारण है, उनसे जो बंद होता है जितनी प्रतिदिन बंद में कितनी वही होता तो नहीं होता, तो अमित चंद्र साहब वो तो करुणानियोग का होगा, हमें तो करुणानियोग ही है, अरे करुणानियोग का नहीं है, अध्यात्म सबसे बड़ा आध्यात्मिक कौन है मुझे बताओ, अरे चंद्र चंद्र से भी बड़ा आध्यात्मिक अमृत चंद्र है, और उनने पुरुषा सिद्धि उपाय में लिखा एनांशे ने सुदृष्टि तेनांशे ने बंधनम नास्ती और एनांशे ने तू रागा तेनांशे ने बंधनम भवती, एनांशे ने सम्यक ज्ञानम तेनांशे ने बंधनम नास्ती और एनांशे ने तू रागा तेनांशम बंधनम भवती, एनांशे ने चरित्रम तेनांशे ने बंधनम नास्ती और एनांशे ने तू रागा तेनांशे ने बंधनम भवती, तो जो जी कहते यहाँ होता वहां नहीं होता तो कहना नहीं, तो कांटे पे तोल के बता देता है, और अध्यात्म तो मुख्यता से अरे ऐसा हुआ तो नहीं हुआ, कोई शिकायत की गिनती नहीं है, क्या कीमत है, काय का गया क्या हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्या 10-20 रुपए चले गए तो चले गए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये फर्क नहीं पड़ने वाली बात है, समझे ना। जब उसकी हम बारीकी में जाएंगे तो बराबर गुणस्थान परिणति के हिसाब से बंध का और अबंध का नियम है, उपयोग से थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, आते में नमक जैसा क्यों पड़ता है कि वो उपयोग से परिणति शुद्ध होती है, और उपयोग नहीं है शुद्ध तो परिणति शुद्ध होगी नहीं, वो तो होता ही है उपयोग, बीच में नहीं होगा सवाल नहीं है, फिर भी नहीं हो तो भी होगा, शुद्धि बढ़ेगी जो भी भाई, तो कैसे बढ़ेगी सर, तो ऐसे बढ़ेगी कि वो असंख्या गुणी निगरा हो रही ना, तो अपन द्रव किधर गिरा तो कर्म के परमाणु फेरे, फिर भाव निर्गरा क्या है? शुद्धि की वृद्धि भाव निर्गरा है ना, तो असंख्य गुणी भाव निर्गरा हो रही माने शुद्धि की वृद्धि हो रही, तो असंख्य गुणी शुद्धि की वृद्धि उससे हो रही कि नहीं हो रही? और असंख्य गुणी निर्गरा हो रही इसका मतलब शुद्धि की वृद्धि हो ही रही है, तो वो खाते पीते भी उसकी निरंतर आगे बढ़ रहा है मुक्ति के मार्ग में। और भरत द प्रूफ, भरत चक्रवर्ती ऐसे नहीं कपड़े खोलते केवल ज्ञान हो गया, वो जो छाये समय से और निरंतर असंख्य गुणी नजर चल रही थी तो अंदर में जो कर्म का स्टाक था वो सब खाली हो गया था। चल रहे ना, तो वो ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं मैं। नहीं तो ऐसा होता है कि सहायक समय दृष्टि को छोड़ दो तो जो समय दृष्टि है तो उन जीवों के अंदर में मिथ्या तो अनंतानबंदी पड़े है सत्ता में। पर अब जो समय दृष्टि हो गए और अंदर में मिथ्या तो पड़ा है और अंदर अनंतानबंदी कसाई पड़ी है, तो देखो आचार्य ने कह दिया कुडवी पिंड समाना, सत्ता में पड़ा हुआ कब तो पृथ्वी के ढेले के समान है, उसे कोई कुछ हमारा बिगाड़ता नहीं है। और बंधते वक्त भी कर्म बंध का कारण नहीं बनता है वो। अब उदय में आएगा तो उदय में नहीं आ रहा, क्या कौन कहता उदय में नहीं आ रहा? ये तो बहुत स्थूल कथन है कि उदय में नहीं आ रहा, तो कर्म की तो जितनी स्थिति बनी थी उतनी स्थिति वो का काल पूरा हुआ तो उदय में आए बिना रहेगा ही नहीं, दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। तो क्या होता है मालूम कि वो जो अनंतानबंदी किसा है ना वो अप्रत्याशन वर्ण में बदल के तो उसके रूप में उदय आती है। फिर मुनि हो गए तो वो भी अनंतानबंदी है, तो अप्रत्याशन और अप्रत्याशन अनंतानबंदी दोनों प्रत्याशन में बदल के उदय में आती है। अब समझे ना, अभी वो उदय में आई तो फल तो दिया नहीं क्योंकि अप्रत्याशन वर्ण बन गई, अंदर से स्टॉक तो नल हो ही गया ना, अंदर से वो उसका जो कर्म की प्रकृतियों का स्टॉक था वो तो कम हो ही गया ना, और अशुद्धि थी वो तो खिल ही गई ना, शुद्धि की वृद्धि हो गई, तो सर्वोत्तम सम्मान दृष्टि सृष्टि का सहायक कैसे हो जाता है? जोर में साहब जैसे बोलती थी बहन श्री, वो कैसे हो जाता है? क्योंकि धीरे 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 वो काम चालू रहता है, वो ऐसा नहीं कि तुम्हें ऐसा दसेगा तब चालू रहेगा, वो तो 24 घंटे की प्रक्रिया है, इसलिए वो एक एक मिनट की घंटे का हिसाब मत लगाओ। अंदर से पर पदार्थों में से एकत्व मत टूट के त्रिकाली धूल में एकत्व मत आए और समझ लो तुम ऐसे ऑटोमेटिक प्रक्रिया में चढ़ गए कि तुम्हारा उपयोग कहीं नहीं जाए तो अभी तुम्हारा काम निरंतर चालू है। हमारे पास 10 करोड़ रुपया है और हमने उस बैंक में जो भी मिले अधिक से अधिक 10 साल के लिए लगा दिए और जो भी अधिक से अधिक ब्याज उनका मिलता है ना, अब पूंजी थी तो हमने सब बैंक में डाल के ब्याज पर लगा दी, अब काम तो कुछ रहा नहीं, अब रोजी में चिंता करने की जरूरत नहीं है, 10 साल की फिक्स डिपॉजिट कर दी, 10 साल के पहले उसमें कुछ सोचने से कुछ होने वाला नहीं है रमेश जी, तो क्या करें? चलो अपन नौकरी कर लेते हैं, तो अपन 10,000 रुपये महीना की नौकरी कर लेंगे। आप समझे ना, अब एक दिन काम पे नहीं गया तो सेठ जी ने कहा हम पैसा काट लेंगे, तुमको 15 दिन की अवैतनिक छुट्टी मिलती है ना, बाकी के बाद में वेतन कटेगा। तुम्हें हाँ मैं तो साहब ऑफिस जाऊंगा, क्यों? मुझे तो 300 रुपये का नुकसान हो जाएगा, 300 रुपये रोज मिलते हैं ना तो 300 रुपये कट जाएंगे। अरे 300 रुपये का क्या सोचता है तेरे वो अरबों मुझे लगे हैं बैंक में उनसे लाखों रुपया का ब्याज आ रहा है, तो 300 कट जाए तो क्या फर्क है, मिल जाए तो क्या फर्क पड़ता है? बोलिए क्या करता है तू नौकरी? क्योंकि तो समय काटने को करता हूं, मुझे जरूरत तो नहीं है। क्यों आप देखते कि नहीं देखते, वो जो लाभ हो रहा है वो इतना बड़ा है कि जिसने 100-200 रुपए का नुकसान कुछ महत्व ही नहीं रखता है, लेकिन मूर्ख जी ऐसा है उसी का जनत लगाया करता है। तनखा कट गई साहब मेरी, महीना भर की तनखा कट गई, शिविर में आ जाओ जयपुर में, क्यों क्या साहब हमारे 15 दिन की छुट्टी थी, छुट्टी कौन कहता नहीं मिलती, वो अवैतन की मिलती, क्यों क्या बात करता है तू, तू छुट्टी की बात करता है, अवैतन वेतन कटेगा तो कट जाएगा, क्या कीमत है तेरे लिए उसके उस वेतन की। तो ये एक एक मिनट में का जो समय का उससे प्रभावित होता है, जबकि उससे 1000 गुनी लाख गुनी इनकम चाली है, तो एक एक समय का जो थोड़ा उपयोग थोड़ा इधर चला गया उधर चला गया तो घबराने लगता है, ऐसा उपयोग खराब हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। अरे क्यों घबराता है, अंदर में श्रद्धा सही है तो वो खराब होने की कोई कीमत नहीं है, और अंदर में श्रद्धा खराब है तो अच्छे होने की कोई कीमत नहीं है। तो ऑटोमेटिक प्रक्रिया में इतनी तेजी से मुख्य मार्ग आगे बढ़ता है तो उसकी कल्पना नहीं है। दीपेंद्र जी साहब ये तुम्हारी क्रिया कांड में कुछ नहीं रखा है, मेरी दिक्कत है कि ज्यादा बोल नहीं सकता हूँ, गुरुदेव की हिम्मत थी वो बोलते थे, नहीं तो सब लोगों को बुरा लगने लगता है, लेकिन वस्तु स्वरूप है, हाथ पर रखे हुए आंवले जैसी बात है। उस इनकम के सामने ये इनकम और हानि कुछ कुछ कीमत नहीं रखते हैं, समझे ना। तो देखो साहब फ्रैक्चर में रुष्टि हो जाएगा तो तार भव में मोक्ष अवस्था लगा कैसे चला जाएगा, अर्धपुत्र पर अरे अर्धपुत्र परमात्मा क्या बात करते हो तुम, वो तो जिसका छूट जाए उसकी बात है, तो तुम्हें क्या ऋषि की बात हुई क्यों, लेकिन कायम रहे तो फिर वो 10 गुना भव नहीं निकालता है, क्योंकि किस तेजी से वो उसका अंदर का माल खलास हो रहा है, असंख्यात गुणी नहीं रहा, कितनी तेजी से शुद्धि की वृद्धि हो रही है तुझे अभी कल्पना नहीं है। इधर वस्तु का स्वरूप समझे, उसका चिंतन करे तो तुझे उसका आनंद जो है उसकी कल्पना तेरे को नहीं है। अभी इस जगत के आनंद की कल्पना है ना, अभी जो वस्तु के स्वरूप को समझने की सोचने की चिंतन की का जो आनंद है वो उसके सामने कुछ आनंद नहीं है। कि वस्तु जब सर्व भगवान की वाणी में आया था समोसन में बैठ के जो बताया, जब वो हमें हाथ पर रखे हुए आंवले जैसा दिखाई दे क्यों, उसके आनंद की कोई आप कल्पना कर सकते हैं कैसा वो है, कहाँ पंचम काल में जमाना है नहीं, कुंद कुंद लिखते हैं हम खड़े हैं ना, ऐसा देखा प्रचन सार में कृष्ण सूच का में कि तुम धारण कर लेगा महाराज मेरे बहुत मुश्किल है, कैसे होगा कि हम खड़े हैं ना है? कितने जोरदार शब्दों में कहते हैं कि हम तेरे को खड़े हैं ना, तू क्यों चिंता करता है कि हम तुम्हारी क्या गारंटी है कि हमारी क्या, ये तो सर्वज्ञ की गारंटी है, वस्तु के स्वरूप की तरफ से गारंटी है, क्यों ये वस्तु के स्वरूप श्रद्धा के ठीक होते ही गाड़ी इतनी तेजी से मुक्ति के मार्ग की तरफ बढ़ती है कि ये सब चीजें ऑटोमेटिक प्रक्रिया में आ जाती हैं, आए बिना रहेंगी नहीं, नहीं होंगी तो मोक्ष होगा नहीं, नग्न दिगंबर दशा ख्याल में आई ना, लेकिन तुझे कोई करने की जरूरत नहीं, आ जाएंगी भैंस चकबर जी घर में ही बैठे रहेंगे, घर में ही बैठे रहेंगे तो मोक्ष कैसे होगा, केवल ज्ञान कैसे होगा, अरे जब केवल ज्ञान का काल आ जाएगा तो छूट जाएगा, रोटी फिर जाएगी कपड़ा हो जाएगा अपने आप हो जाएगा, कोई घबरा मत, वो उसकी मैं प्रैक्टिस करूंगा, इसी में प्रैक्टिस करूंगा, ये प्रैक्टिस मैक्टिस करने से कुछ होने वाला नहीं है, ये मार्ग नहीं है, ये जड़ की क्रिया का अभिमान है, ये मिथ्यात्व है कि मैं देह को ठीक करूंगा, जिड़ की हड्डी की ठीक करूंगा तो सामने बढ़िया होगी, मैं ऐसे ऐसा बैठूंगा, ज्ञान के लिए क्या नहीं होगा, जिसकी कुबर निकली होगी तो उसकी आत्मा का ध्यान होगा ही नहीं, क्यों कुबर निकली होती है ना किसी किसी की, तो नहीं होगी ऐसी सीधी इडली की हड्डी वाले के होता होगा तो उसके नहीं होगी। बहुत सावधानी का आसन बहुत अच्छा है, मेरा मतलब ये है ना, लेकिन वो बहुत गुण है, वो अंदर की जो चीज आएगी तो तू कैसा ही होगा। देखो जंगल में मुनिराज बैठे थे और उन्हें पूरा भव का बैरी आया और उठाकर आकाश में ऐसा उछाल दिया गेंद जैसा, अब ऐसे चक्कर काटने लग गए ख्याल में ना मुनिराज, लेकिन बद्रीसा नारा समय होता है तो उनका आसन भंग नहीं होता है, खड़े होंगे तो खड़े कैसे कैसे रहेंगे, वो पद्मासन में तो पद्मासन में रहेंगे और खूब चक्कर काटेंगे और वो वही केवल ज्ञान हो गया और फिर वही मोक्ष हो गया। ऐसे चीजों को क्या बोलते हैं, गगन सिद्धे दो नमार्घम निर्वामती स्वाहा, ये आकाश से सिद्ध होंगे, जल सिद्धे दो थल सिद्धे दो, ऐसा फेंक दिया समुद्र में और वो समुद्र में गिरा एड़ा टेड़ा गिरा क्या, तो वो जल सिद्धे दो बोलते हैं और ऐसे असंख्यात हैं, ऐसा नहीं एक दो की बात है जी, कोई जगह खाली नहीं है, खाली नहीं रहा कौन, तो ऐसे जीव तो वो सिद्ध सलाह में, या तो भगवान ऐसे बैठे होंगे पद्मासन लगा कर क्यों, और या खड़े होंगे, अरे नहीं कुछ ऐसे भी होंगे क्योंकि जब उनके आकाश में जो स्थिति होगी थी वो आत्मा के प्रदेश वैसे ही होंगे ना। वैसे तो केवल ज्ञान होने के बाद फिर वो बिल्कुल सुस्थित हो जाता है, वो मोक्ष तो फिर बाद में होगा ना, तो वो सुस्थित स्थिति में ही जाएगा, एड़े टेड़े नहीं होंगे। लेकिन मेरे कहने का मतलब है देह की स्थिति कैसी हो तो भी तेरा केवल ज्ञान उससे रुकने वाला नहीं है, संयोग के आधार नहीं है, स्वभाव के आधार पर है।